प्रभान त्यनाजा राधा क्रिया चलि गे चेतन्य प्रभो नित्यानन्द अद्वैत राधा युवा चलिग वक्तव्ये प्रभो नित्यानन्दा राधा चलि गे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jai Radha, 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 Jai Jai Sita Rama Sanaroma, Jai Sita Rama Sanaroma. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Yasamati nandana braj baranagara gokula ranjana kala. Gopi parana dhana madana manohara Gopi parana dhana madana manohara Kanyadda manavi dhana Kalya damana vidhana Abalai namami abhilasa Abalai namami abhilasa Vipinna puram dharana vanina dharam Bhanti padanti vasa Vipinna puram dharana vanina dharam Bhanti padanti vasa Bhaya jana palana sura kula nasana Bhaya jana palana sura kula nasana Dhanda gajana rakhvara Dhanda gajana rakhvara Govinda Madhava Namalita Tashkara Govinda Madhava Namalita Tashkara Sundara Nanda Gopala Jamuna tata chada gopi pasanahara Jamuna tata chada gopi pasanahara Rasa rasika kipa moya Rasa rasika kipa moya Shri Radha Madhava Vrindavan Nat Bhava भक्ति विनोद भक्ति विनोद हरि भो हरि भो हरि भो हरि भो हरि भो जय ओम विष्णुपाद परमहंस पयु जगचार्य सदसी श्रीमान दिवांगेश्वर बेचर भक्तिदानंदा स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की श्री श्री गोणताय की श्री श्री राधाराज बिहारी ललिता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की ऑल ग्लोरी श्री सम ऑफ द बॉडीज ऑल ग्लोरी श्री सम ऑफ द बॉडीज ऑल ग्लोरी श्री सम ऑफ द बॉडीज All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज क्लास हिंदी में करेंगे कल इंग्लिश में किया था सो दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी कैन से इज समबडी ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश हिंदी राघव इज नॉट देयर सो अक्सर एकादशी वाले दिन हम लोग प्रभुपाद लीलामृता से भी पढ़ते हैं तो थोड़ा हम प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा करेंगे सुनेंगे और फिर आज का जो श्लोक है वो भी करेंगे ठीक है तो आपको इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट कर रहा है हिंदी टू इंग्लिश ओके ओके सो रीडिंग फ्रॉम लीला मीता पढ़िए
हरे कृष्णा एक रात अभय ने चमत्कार पूर्ण स्वप्न देखा ऐसा स्वप्न जो उन्होंने गृहस्थ जीवन में कई बार पहले देखा था उन्होंने देखा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सामने प्रकट हुए हैं ठीक उसी रूप में जिसमें अभय उनके जीवन काल में उन्हें देखा करते थे लंबे विद्वतापूर्ण सन्यासी आध्यात्मिक लोक से कृष्ण के निजी अनुचरों से सीधे चले जा रहे थे उन्होंने अभय को पुकारा और संकेत दिया कि वे उनका अनुगमन करें उन्होंने बार बार पुकारा और संकेत दिया वे अभय से संन्यास लेने को कह रहे थे उनका कहना था वो सन्यासी बनो और महाराज आश्चर्य अभिभूत होकर अभय जागे उन्हें यह आदेश उस मूल आदेश का नया संस्करण लगा जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता की पहली भेंट के समय उन्हें दिया था वही आदेश जो उनके आध्यात्मिक गुरु ने अपने बाद के पत्र में और जोरदार शब्दों में दोहराया था कि प्रचारक बनो और अंग्रेजी के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रसार सारे पश्चात जगत में करो संन्यास का यही उद्देश्य था नहीं तो उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें इसे स्वीकार करने को क्यों कहते अभय ने तर्क दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं कि अब संन्यास ले लो और तुम यह मिशन पूरा करने में सफल हो जाओगे
ओम ज्ञानं मिरन्दस्य ज्ञानं जनाशलक्य चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोवेसं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वापदन्तिकम् वन्देऽहम् श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपाम् सग्राजतम् सहागना रघुना तन्वितं तं सुदेवं सद्वेतं सुवधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा भगवान् सहागना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्ता कांचना गौरांगी ऋषभानु सूति देवी प्रणमामि हरिभ्ये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच परितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद लीलामृता में प्रभुपाद के जीवन के विषय में आप सूचना प्राप्त करते हो और एकादशी के दिन हम लीलामृता से पढ़ते हैं और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं और लीलाओं का संक्षेप में चर्चा भी करते हैं। तो यहां आपने देखा कि प्रभुपाद जी को एक सपना आया। वैसे तो प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी से मिले थे 1922 में। उस समय प्रभुपाद जी स्कॉटिश कॉलेज में विद्यार्थी थे और स्टूडेंट लीडर थे। प्रभुपाद जी के एक मित्र थे जिन्होंने प्रभुपाद जी से कहा, एक खास सन्यासी है यहां कलकत्ता में, चलो उसे मिलने के लिए। प्रभुपाद जी के जो पिता थे गोरमोंड है, वो एक कपड़े के व्यापारी थे और संतों की वो बकायदा देखभाल करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि वो भेदभाव भी नहीं करते थे, कौन असली संत है कौन ढोंगी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं बहुत संतों को मिल चुका हूं, मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ। पर प्रभुपाद जी के मित्र ने कहा, नहीं, ये संत दूसरे संतों जैसा नहीं, ये एक शुद्ध भक्त है। और प्रभुपाद जी कहते थे वो लगभग मुझे घसीट कर ले गए बंसी भक्ति सिद्धांत जी को मिलने के लिए। तो पहले ही मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी ने जब देखा ये इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने कहा, तुम ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। और प्रभुपाद जी को सपना आया, प्रभुपाद इस समय वृंदावन में निवास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी पहले कलकत्ता में थे और 1932 में बॉम्बे में थे, जो बॉम्बे में गौड़िया मत का केंद्र है इसकी स्थापना में प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान था। और प्रभुपाद जी घर सब छोड़कर फिर वृंदावन में गए दादा दामोदर मंदिर में रहने के लिए। और प्रभुपाद जी को भाव का भाव क्या था कि मुझे अपने गुरु महाराज के उपदेश का पालन करना है। गुरु महाराज का उपदेश था, दो उपदेश दिए थे भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को। एक समय भक्ति सिद्धांत जी राधाकुंड में हजारों शिष्यों के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी उन्हें मिलने गए राधाकुंड में। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि अगर भगवान तुमको धन दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और ग्रंथों का वितरण करना। तो ये था एक आदेश, क्या ग्रंथों को प्रकाशित करना और ग्रंथों का वितरण करना। और दूसरा आदेश था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। तो प्रभुपाद जी को सपना आया और सपने में भगवान कह रहे हैं, सपने में उनके गुरु महाराज कह रहे थे, संन्यास लो संन्यास लो संन्यास लो। वैसे हमारे समाज में विभाजन होता है चार वर्ण चार आश्रमों का, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। और सन्यास आश्रम जो है प्रचार की दृष्टि से सबसे उत्तम आश्रम माना जाता है। और भक्ति सिद्धांत जी सपने में आकर प्रभुपाद जी से कह रहे हैं संन्यास लो। प्रभुपाद ने घर तो छोड़ दिया था, वानप्रस्थ के रूप में रह रहे थे राधा दामोदर में, और वृंदावन में रहते थे, बकायदा दिल्ली आते थे कागज खरीदने के लिए, ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, ग्रंथों के प्रकाशन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए। और फिर प्रभुपाद जी खुद जाते थे सड़कों में, लाइब्रेरीज में, कॉफी हाउस में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो यहां आप पढ़ रहे हो कि सपने में भक्ति सिद्धांत जी ने कहा जाओ अभय संन्यास लो। तो संन्यास आश्रम प्रचार की दृष्टि से सबसे उत्तम आश्रम माना जाता है। और आप पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी संन्यास लिया, किस लिए? प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से भी जाने जाते थे, छोटी आयु में ही बड़े प्रसिद्ध विद्वान बन गए थे। तो एक दिन एकांत में वो बैठे थे और गोपी 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 भाव प्रकट कर रहे थे। और गोपी भाव, जैसे महाप्रभु ने कहा है, सबसे उत्तम भाव है। गोपियों की तुलना सेवा की दृष्टि से कोई नहीं कर सकता। गोपियों के मन में एक ही भाव था सदा, भगवान के सेवा में जुड़ने के लिए। एक समय भगवान को सिर दर्द हो रही थी, तो भगवान ने कहा उद्धव से, ये जो सिर दर्द है ये दूर होगी अगर मेरे भक्त के चरणों की धूल यहां लगेगी। जैसे आपको सिर दर्द हो तो आप टाइगर बाम लगाते हो, तो भगवान की इच्छा थी कि गोपियों के चरणों की धूल या भक्तों की धूल लाया जाए। उद्धव जी गए सबके पास, योगियों के पास, ब्राह्मणों के पास, सबने इनकार कर दिया। सबने कहा कि हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे में लगेगी, इसका यह परिणाम होगा हम नरक में जाएंगे, हम ये नहीं कर सकते। पर जब गोपियों के पास उद्धव जी पहुंचे, गोपियों का एक ही भाव था, भगवान की प्रशंसा। उनके मन में ये भाव नहीं था हमारा क्या परिणाम होगा। तो गोपियों की जो भाव है उसकी तुलना कोई भक्त नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु जी ये भाव प्रकट कर रहे थे गोपी 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 कहते हुए। तो एक संस्कृत का विद्यार्थी था वहां, उस संस्कृत के विद्यार्थी ने कहा गोपी 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 क्या कहते हो, हरे कृष्ण बोलो। तो वो महाप्रभु जी के भाव को नहीं समझ पाया, तो महाप्रभु ने उसका पीछे किया क्रोध में, और वो ब्राह्मण भाग गया ब्राह्मणों की सभा में और कहा हा हा, अब भाग के आओ ना। तो सबने कहा क्या 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 हो गया, इतने इतने भाग के आ रहे हो, मेरी तो जान बच गई। उन्हें माई पंडित जिसको हमारा पूरा समाज इतना आदर देता है, आज मैंने उसका असली रूप देख लिया, इतना क्रोधित है मेरे पीछे भागा। वो गोपी 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 कह रहा था, मैंने कहा हरे कृष्ण बोलो। तो सारे पंडितों ने कहा कि हम क्या जगन्नाथ मिश्रा के बेटे से छोटे हैं क्या? निमाई पंडित अपने आप को समझता क्या है कि वो जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है। और महाप्रभु ने जब ये देखा ये भाव, महाप्रभु सोचने लगे मैं प्रकट हुआ हूं पतितों का उद्धार करने के लिए, पतित पवन हेतु तव अवतार, मैं प्रकट हुआ हूं पतितों का अवतार का उद्धार करने के लिए, और यहां ये क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं मेरे प्रति। तो महाप्रभु जी ने निर्णय किया कि मुझे क्या ग्रहण करना चाहिए, संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ आप देखते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास आश्रम, यहाँ आप देखते हो कि प्रभुपाद जी को भी सपने में भक्ति सिद्धांत जी क्या कह रहे हैं, जाओ संन्यास आश्रम ग्रहण करो। और क्योंकि संन्यास आश्रम में व्यक्ति तन मन धन को लगाता है किसमें, भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद जी ने फिर आगे जाके संन्यास आश्रम ग्रहण किया और प्रभुपाद जी सारे विश्व में गए कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। तो इस प्रकार आप सब लीलामृता पढ़िए, लीलामृता में बड़े सुंदर रूप से प्रभुपाद जी के पूरे जीवन की कथा प्राप्त होती है। कई बार हम भक्तों को मिलते हैं जो कहते हैं हमारा तो दुर्भाग्य था हम प्रभुपाद जी से मिले नहीं, पर आप प्रभुपाद जी से आज भी मिल सकते हो उनके ग्रंथों का अध्ययन करके और लीलामृता इत्यादि पढ़कर। और सारे विश्व में कई लोग जुड़े हैं इस संस्था के साथ और उनका परिचय कैसे हुआ, ये लीलामृता के द्वारा। तो एकादशी के दिन खास करके लीलामृता से पढ़ते हैं और आप सब भगवान के शुद्ध भक्त की लीलाओं का स्मरण करो अपने जीवन को सुधारने के लिए। प्रभुपाद लीलामृता की, तभी हम भागवत का श्लोक लेंगे। मुक्तान्या संगो भागवती अमालम भक्ति उद्वहन वेन्यस्य चरितं पुण्यं श्रीनुय श्रावे पते। मुक्तान्य संगो भगवती अमालं भक्तिन उद्वहम वैन्यस्य चरितं पुण्यं शूनुयच्छवयेत् पथेर। मुक्तान्यासंग भगवती अमालं भक्तिन उद्वहम वैन्यस्य चरितं पुण्यं शूनुयच्छवयेत् पथेर। शब्दात् अच्छा, कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो, हिंदी किताब आ रही है। उच्चारण कोई करना चाहते हैं, किधर किताब शब्दार्थ।
मुक्तान्य संग समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर भगवते श्री भगवान के प्रति अमलाम विशुद्ध भक्तेम भक्ति उद्वहन करते हुए बन्यस्य महाराज बिन के पुत्र का चरितम चरित्र पुण्यम पवित्र श्रुणयात सुने श्रावयेत सुनावे पठेत तथा पढ़े। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतयालीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना सुनाना तथा पढ़ना चाहिए। तात्पर्य। नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को विशेषतया श्रीमद् भागवतम में वर्णित रास लीला के विषय में सुनने का अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसे भक्त को समझ लेना चाहिए कि पृथु महाराज की लीलाएं भी श्री भगवान की लीलाओं से अभिन्न हैं। पृथु महाराज ने आदर्श राजा के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि प्रजा पर किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार उसे शिक्षित करना चाहिए, किस प्रकार राज्य का आर्थिक विकास करना चाहिए, किस प्रकार शत्रुओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार यज्ञ करने चाहिए आदि आदि। इस प्रकार सहजिया या नवदीक्षित भक्त को सलाह दी जाती है कि वह भले ही अपने को भक्ति की दिव्य स्थिति पर समझे तो भी वह पृथु महाराज के कार्यकलापों के संबंध में अवश्य सुने, जपे तथा अन्य को सुनाए।
तो पिछले कई अध्यायों से आप पृथु महाराज की कथा पढ़ते आ रहे हो और आपने ये पढ़ा और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि पृथु महाराज एक आदर्शनीय राजा थे। आदर्शनीय राजा कृष्ण दृष्टि से उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया। क्या था प्रजा का उपदेश? आप सबको परम भगवान का चिंतन करना चाहिए, आप सबको भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना चाहिए, आप सबको तन मन धन अर्पण करना चाहिए भगवान की सेवा में। आप देखते हो कि आज के नेता आपको ये कहते हैं भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, सब कुछ स्मरण कहते हैं आपके नेता नहीं। तो पृथु महाराज के समय समाज अत्यंत सुखी था। आज अगर देखा जाए समाज अत्यंत दुखी है। और जैसे हम कल समझा रहे थे ये दुख की जो संख्या है, दुख की जो मात्रा है, दुख का जो प्रभाव है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार समाज की देखभाल राजाओं द्वारा होना चाहिए और इन राजाओं को कहा जाता है राज ऋषि। राज ऋषि का अर्थ है राजा भी और ऋषि भी। आज के हमारे नेता ना राजा हैं ना ऋषि हैं, उन्हें कहा जाएगा आजकल है असुरों का राजशासन। तो जब राजा अपने आप को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करता है और भगवान की शिक्षा को आगे बढ़ाता है और उसका आचरण हो शास्त्र पर आधारित, फिर आप कह सकते हो राज ऋषि है। तो पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को क्या आदेश दिया? प्रजा को आदेश दिया और ब्राह्मणों को, तुम तपस्या करो, सहनशील बनो और आगे क्या, और भगवान की सेवा में सदा जुड़े रहो। तो समाज में आदर्शनीय राजा की आवश्यकता है। जैसे आप पढ़ते हो युधिष्ठिर महाराज के विषय में, युधिष्ठिर महाराज का एक और नाम था धामराज। और युधिष्ठिर महाराज जहां भी जाते थे, एक और चीज हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्राचीन समय में जो राजा होते थे वो पूरे पृथ्वी के राजा होते थे। ये नहीं जैसे आज का भारत देश प्राचीन भारत देश की तुलना में एक तुच्छ स्थान है। प्राचीन समय में जो राजा होते थे पूरे पृथ्वी के राजा होते थे। एक प्रिंसिपल राजा होता था और कई सबॉर्डिनेट राजा, मतलब सबॉर्डिनेट राजा मतलब राजा है पर वो जो मेन राजा है उनके आधार पर निर्देशन करते हैं। और जब पृथु महाराज की इतनी महिमा का वर्णन क्यों किया जा रहा है? आप पढ़ रहे हो पिछले 6 श्लोकों से मैत्रेय ऋषि हमें एक ही उपदेश दे रहे हैं। क्या? पृथु महाराज के गुणगान को सुनो, कल का जो श्लोक था उसका भी यही संदेश था, जो परसों का श्लोक था उसका भी यही संदेश था। पिछले 6 श्लोकों से अलग अलग रूप से मैत्रेय ऋषि ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें परम भगवान का गुणगान सुनना चाहिए। तो ये है आध्यात्मिक मार्ग की सफलता, जब आप रुचि लो भगवान उनके भक्तों के गुणगान में। वैसे तो हम रुचि लेते हैं आजकल अनेक भौतिक विषयों में, जैसे देखा जाए आज कितने रेडियो स्टेशन हैं, FM, AM, कितने TV स्टेशन हैं, और कितने और सबके पास सेलुलर टेलीफोन है, तो हम अनेक विषयों को सुनते हैं। पर मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं हमें पृथु महाराज जैसे भगवान के भक्तों का गुणगान करना चाहिए। भगवान उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं। तो जब आप कहते हैं, जब यहां बार बार कहा जा रहा है पृथु महाराज का गुणगान सुनो, तो आप पूछ सकते हो पृथु महाराज का गुणगान क्यों कहा जा रहा है इतना, भगवान का क्यों नहीं कहा जा रहा? एक तो पृथु महाराज भगवान के शक्तवेश अवतार है, अवतारों के 6 विभाग है, गुणावतार, लीलावतार, मन्मथावतार, शक्तवेश अवतार, युगावतार तो और पुरुषावतार। और शक्तवेश अवतार के 2 रूप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जबकि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, इनडायरेक्ट जब वो किसी को शक्ति देते हैं कुछ योगदान सफल बनाने के लिए। जैसे जीसस क्राइस्ट, प्रभुपाद जी कहते थे जीसस क्राइस्ट वाज अ शक्तवेश अवतार, भगवान ने शक्ति दी थी ये धर्म की स्थापना करने के लिए। तो पृथु महाराज हालांकि शक्तवेश अवतार थे, उन्होंने कभी ये नहीं दावा किया कि मैं भगवान का अवतार हूं। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में भगवान प्रसन्न होकर आए, और जब ब्रह्मा जी के पुत्र कुमारास जब वो आए पृथु महाराज के शासन में राज्य में, पृथु महाराज ने बड़ी निम्रता के साथ उनके चरणों को धोया और उनसे पूछा कि अभी हमें क्या करना चाहिए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जब हम किसी संत को मिलते हैं तो हमारा क्या प्रश्न होना चाहिए, हम कैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये नहीं आशीर्वाद हो कि हमें सुंदर पत्नी मिल जाए, आशीर्वाद हो कि हम धन प्राप्त कर लें, आशीर्वाद हो ये भौतिक सुविधाओं के लिए। भौतिक सुविधा तो आपको हर जन्म में प्राप्त हो सकती है, पर भगवत भक्ति आप केवल इस मनुष्य योनि में प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जब हम संतों को मिलें हमें ये पूछना चाहिए हम आध्यात्मिक मार्ग में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो पृथु महाराज जब कुमारास ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं जब उनके वो राज्य में पहुंचे तो उन्होंने उनसे क्या पूछा, यही पूछा ये बताइए कि मैं जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकूं। तो पृथु महाराज आदर्शीय राजा थे, जैसे भगवान राम पिछले महीने आप भक्त ने रामनामी उत्सव मनाया था, राम के इस मंदिर में रामचंद्र जी का बड़ा सुंदर विग्रह भी है। तो भगवान राम भी एक आदर्शनीय राजा थे, हालांकि वो प्रकट हुए थे त्रेतयुग में, वातावरण हुआ था उनके राज्य में सत्ययुग का। पृथ्वी में आज भी प्रकट हुए हैं सत्ययुग में, भगवान भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेतयुग में। तो आज भी हम राम राज्य का स्मरण क्यों करते हैं, क्योंकि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, ना भौतिक कष्ट, ना शारीरिक कष्ट, ना मानसिक कष्ट, किसी प्रकार का क्लेश नहीं। और भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी उलाज जैसे पाल रहे थे, जैसे आप पढ़ते हो पृथु महाराज, पृथु महाराज का इतना स्नेह था प्रजा के प्रति कि वो पूरी प्रजा को अपनी औलाद जैसे पाल रहे थे, जैसे एक पिता अपने पुत्रों को पालता है। उस भावना से पृथु महाराज अपनी प्रजा को पाल रहे थे, अपनी प्रजा को शिक्षा दे रहे थे, भगवान का गुणगान करो, भगवान का गुणगान करो। तो भगवान राम भी अपनी प्रजा को उलाज जैसे पाल रहे थे, उल्टा भगवान राम अपने अपने आप को छुपाकर, अपना असली रूप को ढककर समाज में घूमते थे, ये देखने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है किसी नागरिक को, और कोई परेशानी हो तो उसे तुरंत ही दूर करते थे। भगवान राम खुद खड़े होकर देखते थे सड़कों की सफाई कैसे हो रही है, और अयोध्या की सफाई पता है कैसे होती थी, रोज अयोध्या की सड़कों को धोया जाता था गुलाब के पानी के साथ। अंदाजा लगाओ गुलाब के पानी के साथ सड़कों को धोना, तो कितनी धनी राजधानी हो गई है ना। तो प्राचीन समय में जो हमारे नेता थे, आजकल तो क्या रिवाज है नेता चुनने का, परतंत्र डेमोक्रेसी है। प्रभु जी कहते थे डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी। तो ये जो डेमोक्रेसी है प्रभु जी कहते हैं डीमन क्रेजी। हमारे वैदिक साहित्य ये कहता है नेता होना चाहिए शास्त्र पर आधारित उसका चरित्र, और जब नेता शास्त्र पर आधारित शासन नहीं कर रहा है तो प्रजा जो पाप कर रही है उसका हिस्सा भी उसे भुगतना पड़ता है। प्रजा जो पाप कर रही है, और जो नेता जो पाप करते हैं उसका परिणाम प्रजा को भी भुगतना पड़ता है। तो आज के वातावरण में, क्योंकि हमारे नेता जो है जो इस विचार के हैं और किसी प्रकार का यज्ञ नहीं किया जा रहा, तो पूरा समाज उसका परिणाम भुगत रहा है। तो ये एक राजा थे प्राचीन समय में जिनका नाम था महाराज सिद्धि। महाराज सिद्धि अत्यंत दयालु राजा थे। एक समय देवताओं ने निर्णय किया हमें राजा की परीक्षा लेने दो कितने दयालु है। तो एक देवता बन गए बाज और एक बन गया कबूतर, और बाज जो है ईगल कबूतर का पीछा कर रही थी, और कबूतर आया महाराज सिद्धि के चरण के गोद में और कहने लगा बचाओ बचाओ ये बाज मेरा मुझे खाने का प्रयास कर रही है। तो राजा ने कहा तो मेरे पास आए हो तो मैं बचाना मेरा कर्तव्य है। तो थोड़ी देर बाद बाज आ गई उधर, बाज ने कहा यहां कोई कबूतर आया था क्या? तो राजा ने कहा आया था और मैंने उसको शरण दिया हुआ है, नहीं मुझे उसका मांस खाना है। तो राजा ने कहा मेरे शरीर का मांस ले लो और वो कबूतर मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। तो इस बाज का और राजा का ये निर्णय हुआ कि जो कबूतर का वजन है उसके बराबर का मांस उसके शरीर से दिया जाएगा बाज को खाने के लिए। और क्योंकि देवता राजा की परीक्षा ले रहे थे ये कबूतर का जो वजन है वो बढ़ते गया और महाराज अपने शरीर से चमड़ा दे गए। फिर देवता इतने प्रसन्न हुए राजा की इस भाव को देखकर कि उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और बड़े सारा चमड़ा जो राजा के शरीर में फिर जोड़ दिया। तो ये है एक और उदाहरण। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र में अनेक प्रसिद्ध उदाहरण मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां क्या कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त भी हो शुद्ध भक्त किसे कहते हैं? जो कि पूरे रूप से जुड़ा है भगवान के सेवा में। तो भगवान प्राप्त यहाँ कहा जा रहे हैं मैत्रेय ऋषि के द्वारा। मैत्रेय ऋषि इन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त भी हो वो भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है, उसे भी किसी हालत में प्रीतु महाराज का गुणगान जरूर सुनना चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते मैं तो शुद्ध भक्त बन गया हूं, अब मुझे भगवान के नाम उनके भक्तों का गुणगान सुनने की आवश्यकता नहीं। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं तीन चीजों को नहीं त्यागना चाहिए, क्या है वो? यज्ञ, दान, तपस्या। और भगवान कहते हैं अगर तुम आत्मज्ञानी हो तो भी नहीं त्याग सकते। आप ये नहीं कह सकते आई एम सेल्फ रियलाइज, अब मुझे यज्ञ दान तपस्या की आवश्यकता नहीं। तो यज्ञ दान तपस्या आत्मज्ञानियों के लिए भी है। तो उसी भाव को इस श्लोक में प्रकट किया जा रहा है। तो यहां मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि अगर आप आत्मज्ञानी भी हो तो भी आपको पृथु महाराज का गुणगान सुनना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया हूं कि मुझे श्रवणम कीर्तनम करने की आवश्यकता नहीं। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहा जाता है। हा? दिन में 300,000 बार जाप करते थे और 300,000 बार जाप समाप्त किए बिना ना कुछ खाते थे ना पीते थे ना कुछ बोलते थे। तो हरिदास ठाकुर क्योंकि उनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, तो वो कभी भी अंदर नहीं गए जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर। सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी भी कभी नहीं गए क्योंकि वो मुसलमान राजा का शासन में नौकरी कर रहे थे, तो उस समय के समाज में ये कहा जाता था वो मुसलमान बन गए। पर चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसी योजना की थी कि उनके सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर रोज हरिदास को प्रसाद लाकर देते थे, महाप्रसाद जगन्नाथपुरी मंदिर का। तो महाप्रभु को सूचना मिली कि हरिदास का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। हरिदास को पता था कि महाप्रभु अभी जी अप्रकट होने लगे हैं पृथ्वी से, और उनके अप्रकट होने से पहले उनकी इच्छा थी कि मैं अप्रकट हो जाऊं। तो महाप्रभु ने उन्हें कहा कि हरिदास तुम तो आत्मज्ञानी हो तो विश्राम करो, जाप थोड़ा कम कर दो। हरिदास ने कहा नहीं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वह हर स्थिति में सततम कीर्तयन्तो मम, सदा भगवान का कीर्तन करते हैं। और कीर्तन करने के अनेक साधन हैं। एक है जीव द्वारा भगवान के नामों का और लीलाओं का गुणगान करना, और कानों द्वारा उनके भक्तों के गुणगान और नामों को सुनना। तो जैसे हमने अभी थोड़े समय पहले प्रभुपाद लीलामृता पढ़ी थी, तो प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो आप अगर प्रभुपाद जी का स्मरण करोगे, उनकी शिक्षा का स्मरण करोगे, तो साथ में विष्णु का भी कर रहे हो, क्योंकि प्रभुपाद के मन में सदा ये भाव था विष्णु का। तो इसी प्रकार पृथु महाराज पर बल दिया जा रहा है क्योंकि वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनके मन में एक ही भाव था भगवान की सेवा। तो हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि हम सब श्रवणम कीर्तनम में रुचि लें, और अगर हम श्रवणम कीर्तनम में रुचि लेंगे फिर हम आध्यात्मिक परिवर्तन कर पाएंगे। तो यहां आज के श्लोक में कहा जा रहा है हमें भक्ति करते समय भगवान के पृथ्वीराज का गुणगान सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए और दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए भगवान के भक्तों का गुणगान सुनने के लिए। तो हमें खुद भी जाप करना है, खुद सुनना है और पढ़ना भी है। जैसे प्रभुपाद जी ने लगभग इस प्रकार के 100 ग्रंथों का प्रकाशित किया अंग्रेजी भाषा में, जिनका आगे अनुवाद लगभग विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है, हर भारतीय भाषा में हो चुका है। तो इन ग्रंथों में पढ़ो भी। वैसे तो आप सब ज्ञान संघ के वितरण में सहयोग देते हो, पर इन्हें पढ़ना भी चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है क्या कि सुनो और पढ़ो और दूसरों को भी प्रेरणा दो। तो पथेत, पथेत का संस्कृत शब्द का अनुवाद है पढ़ना। तो इन ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए। आप अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, ये देखते हो, हमें योजना बनानी चाहिए कि हम रोज भगवान के संदेश को क्या करें, पढ़े भी। आप सबके पास ये भगवद गीता है सब, तो रोज गीता कौन कौन पढ़ते हो? चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया है कि हमें हरि नाम तो रोज करना ही चाहिए, साथ में गीता भी पढ़नी चाहिए रोज। एक ब्राह्मण, एक भक्त थे भगवान की, जिनका नाम था वासुदेव विप्र, उन्हें कोढ़ की बीमारी थी। इतने दयालु थे कि जब कोई कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिरता था, उसको उठाकर वो जोड़ देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें गले लगाया, जिसके द्वारा कोढ़ की बीमारी समाप्त हो गई और वो एक नौजवान युवक बन गए। फिर उनके मन में ये भय आ गया, उन्होंने कहा पहले तो मुझे कोढ़ की बीमारी थी, कोई मेरे पास आता भी नहीं था, अब चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से मैं एक खूबसूरत युवक बन गया हूं, कहीं मैं घमंडी नहीं बन जाऊं। जैसे अगर कोई खूबसूरत हो, धनी हो, ज्ञानी हो, तो उसके मन में घमंड आ जाता है। तो उसने महाप्रभु से पूछा, मुझे ये शिक्षा दीजिए कि मैं घमंड से कैसे बचूं। तो महाप्रभु ने कहा हरि नाम का जाप करो, रोज गीता भागवत पढ़ो और गीता और भागवत की महिमा का प्रचार करो। इस प्रकार तुम सदा निर्मित भाव से रहोगे, सदा मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हमें क्या करना है, भगवत को, गीता को रोज पढ़ना भी चाहिए। तो आप सब ये निर्णय कीजिएगा, ये पुरुषोत्तम मास है, महीना है, कि आप रोज गीता पढ़ोगे, रोज जाप करोगे, रोज गीता कम से कम पढ़िए। भगवत में पढ़ सको तो अच्छा है, पर कम से कम गीता तो पढ़ो। और आगे कहा गया है दूसरों को भी प्रेरणा दो, पृथु मना जैसे भक्तों का श्रवणम करें। दूसरों को भी प्रेरणा दो का क्या मतलब है, प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाने दाकुताए कहो, जैसे तो मिले उसे क्या कहो, कृष्ण का उपदेश। तो यहां आज के श्लोक में मैत्री और ऋषि तीन विषयों पर बल दे रहे हैं, श्रवणम, पढ़ना और दूसरों को प्रेरणा देना। दूसरों को प्रेरणा दो कि तुम अपने जीवन को सुधारो। इसलिए इस्कॉन के भक्त सारा साल अनेक योजनाएं द्वारा प्रयास करते हैं ये शिक्षा देने के लिए। जैसे कल रात को एक कार्यक्रम में हम गए थे, लगभग 2000 भक्त आए थे मेरे ख्याल से, पूरा इसका दुगना हॉल फुल था। तो भक्त इस प्रकार की योजना क्यों करते हैं, दूसरों को ये मौका देने के लिए कि वे अपने जीवन को सुधारे। तो आज दुनिया अज्ञानता में है, सब नरक की तरफ जा रहे हैं और भक्तों का प्रभाव ये भाव है कि हम सबको बचाएं। और बचाओगे कैसे, प्रचार करके। तो जिस प्रकार यहाँ पृथु महाराज का एक उदाहरण है कि हमें भगवान उनके भक्तों का की कथा श्रवणम करनी चाहिए, और अगर हम ध्यान से प्रयास करेंगे तो भगवान पूरा सहयोग देंगे। तो संक्षेप में इन श्लोकों द्वारा पृथु महाराज के गुणों का गुणगान किया जा रहा है। पृथु महाराज एक आदर्शनीय राजा थे, जिन्होंने पूरी प्रजा को शिक्षा दी किस प्रकार जीवन को आप बिता सकते हो, और अगर हम भगवान उनके भक्तों का श्रवणम करेंगे तो क्या लाभ होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का जो प्रभाव है ये दूर होगा और आप भगवान के शरणागत हो सकोगे। तो आप सब तैयार हो ये करने के लिए, क्या क्या कहा जा रहा है इस श्लोक में, क्या 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 करना चाहिए? हाँ, पर आप कहोगे अरे भगवान का दिन रात सोचेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, हमें तो क्रिकेट का सोचना है, फिल्मों का सोचना है, ये सोचना है कि नहीं, तो बोर हो जाओगे? नहीं, भौतिकवादी व्यक्ति कहते हैं ये हरे कृष्ण वालों ने इनका भूत सवार कर दिया है, दिन रात एक ही नाम का जाप करते हैं, थकते नहीं है? नहीं थकते, क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति डाली है नामों में, भगवान की लीलाओं को आप दिन रात सुनोगे थके नहीं। रामायण महाभारत भागवत गीता आप बचपन से सुनते आया, कभी थकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें दिव्य शक्ति है। तो आप सब नियमित रूप से हरि नाम का जाप कीजिए और प्रीतु महाराज जैसे भक्तों का श्रवणम कीजिए और ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और ये शिक्षा दूसरों को भी दीजिए। भगवान ने गीता में कहा है सब भक्तों में सबसे प्रिय है जो मेरा प्रचार करता है। तो अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो प्रचार कीजिए। वैसे मैराथन के महीने में तो आप सब जुड़ते हो, पर हमारा भाव ये होना चाहिए कि पूरा साल मैराथन है, पूरा साल में लोग अज्ञानता में हैं, पूरा साल हमने प्रचार करना है और लोगों को जोड़ना है किस में, भक्ति भाव में। तो आप सब प्रयास कीजिए और इसके द्वारा आप परम भगवान को प्रसन्न कर सकोगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चंस? हाँ अच्छा बोलो, जल्दी से बोलो, 1 बजे लग चुका है, जल्दी या भी समाप्त करें, आप लोग साइड में आके पूछ लेना। अच्छा पूछे
स्वामी जी, जो हम जाप करते हैं उसका फल हमारे बच्चों को
क्या
भी
क्या
जो हम जाप करते हैं सिमरन करते हैं उसका फल बच्चों को भी मिलेगा, हमारे परिवार को मिलेगा?
अगर किसी खानदान में एक शुद्ध भक्त बन जाए तो 13 पीढ़ी तक सबकी मुक्ति करा सकता है।
धन्यवाद।
तो अब अंदाजा लगा लो कितनी शक्ति है भक्ति में।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे श्रवण और कीर्तन बताया गया है तो स्मरण भक्ति अगर हम भगवान को मन में ध्यान करते हैं तो उसका भी वही फल मिलता है?
हाँ, श्रवणम कीर्तनम करोगे तो स्मरणम भी संभव हो पाएगा, श्रवणम कीर्तनम नहीं करोगे तो स्मरणम भी संभव नहीं हो पाएगा।
यदि स्मरण कर रहे हैं तो
किसी चीज की आप चर्चा करो तो मन में भी वही विचार आता है कि नहीं? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो ठीक 1 बजे महाराज का पुनः प्रवचन होगा, 1:15 बजे महाराज प्रवचन देंगे मंडपम हॉल में, वहाँ सभी के लिए प्रसाद भी है। 1:15 बजे मंडपम हॉल में महाराज पुनः प्रवचन देंगे, आप सभी वहाँ प्रवचन में भाग लीजिए।